अस्सलाम वालेकुम साथियों, जैसा कि आपको पता है हमारा एक कहानियों का सिलसिला है और उसी कहानी को सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम एक और कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है पुराना मोहल्ला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रात को मुझे शायद ज़िंदगी की बेहतरीन नींद आई। सुबह जब मैं सोकर उठा तो काफ़ी देर तक बिस्तर पर पड़ा रहा। नरम बिस्तर और गर्म लिहाफ मुझे बाहर निकलने से रोक रहे थे। खिड़कियों पर मोटे पर्दे गिरे हुए होने के बावजूद सूरज की रोशनी छन छन कर कमरे में दाखिल हो रही थी। मैं बिस्तर से उठकर खिड़की के पास आया और बाहर देखने लगा। मेरी नज़र अपने घर के सामने सड़क पर दौड़ने लगी। सड़क के किनारे तरतीब से लगे दरख्त बड़ा अच्छा मंज़र पेश कर रहे थे। अम्मी ने कमरे में दाखिल होकर मुझे चौंका दिया। अरे बेटा, तुम उठ गए? वहाँ खिड़की के पास क्या कर रहे हो? अम्मी मेरे करीब आ गईं। आओ देखें बाहर कितना प्यारा मंज़र है, मैंने कहा। चलो अब नाश्ता कर लो, फिर आज स्कूल भी तो जाना है, अम्मी ने कहा। स्कूल? मगर अम्मी, मेरा तो यहाँ अभी दाखिला नहीं हुआ, मैंने जैसे अम्मी को याद दिलाया। मैं यहाँ की बात नहीं कर रही बल्कि पुराने स्कूल की बात कर रही हूँ जहाँ तुम पहले जाते थे, अम्मी ने जवाब दिया। मगर अम्मी अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आप मुझे यहीं किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दें, मैंने ज़िद की। अरे बेटा, अभी दाखिले कहाँ हो रहे हैं, तुम्हारा ये साल ख्वाम-ख्वाह ज़ाया हो जाएगा। इस साल इसी स्कूल में पढ़ लो, अगले साल तुम्हें किसी और स्कूल में दाखिला करवा देंगे। चलो अब तैयार हो जाओ। अच्छा अम्मी, मैं मुंह बनाता हुआ उठ खड़ा हुआ। आज जब तकरीबन एक हफ्ते बाद जब मैं स्कूल पहुंचा तो सब ने मुझे घेर लिया। अरे आरिफ, तुम बड़े दिनों बाद आए हो। ये सुहेल था, मेरा हमजमात। मैं इसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और चुपचाप क्लास में दाखिल हो गया। मुबारक हो, तुम लोगों ने नया घर ले लिया है, नए घर चले गए हो, वो मेरे बराबर वाली सीट ही पर आकर बैठ गया। शुक्रिया, मैंने रुके लहजे में जवाब दिया। वो मेरा लहजा देखकर चौंका मगर फिर मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या? हाँ, मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, मैंने झूठ बोला। तो फिर तुम घर जाओ, मैं टीचर को बता दूंगा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सुना है थोड़े दिन पहले तुम्हारे अब्बू की तरक्की भी हुई है। इसकी बात पर मैंने सर घुमा कर इसकी आँखों में देखा। मुझे वहाँ सिवाय खुलूस के कुछ नज़र नहीं आया, मगर मुझे ऐसा लगा कि वो बात जलन में कर रहा है। हाँ, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया और सामने देखने लगा। भाई, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो तुम नाराज़ हो? मेरा ये रवैया देखकर उसने पूछा। मेरा दिल चाहा कि इससे कह दूँ तुम मुझसे बात ही ना करो तो बेहतर है, मगर मैंने ना कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर मैं खामोश हो गया। अचानक मुझे महसूस हुआ कि जैसे इसके कपड़ों से बू आ रही है। मैंने तंग आकर उससे पूछ ही लिया, ये तुम्हारे कपड़ों में से कैसी बू आ रही है? बू? वो हैरत से बोला, फिर चौंक कर मुझे देखने लगा। इसकी नज़रें मेरे साफ सुथरे कपड़ों पर पड़ी। हाँ, वाकई गंदे हो रहे हैं मेरे कपड़े, मैं आज जाकर धोने ही वाला था। फिर वो और कुछ कहे बगैर ही दूसरी सीट पर चला गया। मैं सोचने लगा कि उसे इस सीट पर बैठने का हक नहीं बल्कि किसी और को भी नहीं, क्योंकि इस क्लास में कोई भी मेरे बराबर नहीं है। मुझे क्लास में सख्त कोफ्त होने लगी। आज का दिन क्लास में गुजारना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। फिर अभी तो पूरे 4-5 महीने बाकी थे, कैसे गुजरेंगे? लड़कों के शोर की आवाज़ पर मैं चौंक गया। टीचर के क्लास से निकलते ही सब लड़के उछल कूद में लग गए। आखिर आगे आ गए ना जहालत पर, ज़रा अभी तमीज़ नहीं है इन लोगों में। इतने में मुझे कुछ लड़के अपनी तरफ आते दिखाई दिए। ये सब मेरे पुराने दोस्त थे, लेकिन इनसे मैं अब कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था। आखिर मुझ में इनमें कोई फ़र्क तो होना चाहिए। अब ये लोग मेरे पास आकर बैठ गए। मुझे ये सोचकर ही कोफ्त होने लगी कि मैं वहाँ से उठकर जाने लगा, वो मेरे पास पहुँच चुके थे। आरिफ, मुबारक हो, इनमें से एक ने बड़ी बड़ी तरफ हाथ मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। मुझे भी मजबूरन इससे हाथ मिलाना पड़ा। सुना है तुमने नया घर ले लिया है, दूसरा बोला। फिर कब कर रहे हो नए घर में हमारी दावत, तीसरे ने कहा। लो भूखे कहीं के, मैंने दिल ही दिल में सोचा। फिर कहा, भाई मेरे सर से ज़रा काम से मुझे सर से ज़रा काम है, मैं अभी आता हूँ। मैं वहाँ से सीधा अपने घर चला आया और आते ही अम्मी से उलझ पड़ा। अम्मी, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा, वहाँ सब लड़के जाहिल हैं, ना बैठने की तमीज़ है, खेलने की, और इनके कपड़ों से बू भी आ रही थी। अम्मी ने मेरी बात पे चौंक कर मुझे देखा और बोली, आरिफ ये तुम क्या कह रहे हो? जिन लड़कों के साथ तुम एक हफ्ते पहले तक खेल रहे थे, आज इनके कपड़ों से तुम्हें बू आ रही है? वो एक हफ्ते में जाहिल भी हो गए? बस अम्मी, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा, मैंने बेजारी से कहा। अम्मी ने तेज़ लहजे में कहा, तुम्हें जाना होगा, और याद रखो अगर तुमने अपना रवैया ना बदला तो मैं तुम्हें यहाँ किसी स्कूल में भी दाखिल नहीं करवाऊँगी। मैं खामोश खड़ा रहा। हाँ आज शाम को मैं पुराने मोहल्ले जा रही हूँ, तुम भी चलना। नहीं अम्मी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आज मुझे बहुत काम करना है, स्कूल से काफ़ी होमवर्क मिला है। अम्मी मुझे घूरती हुई कमरे से बाहर निकल गई। फिर जब शाम को वो पुराने मोहल्ले गई तो मैं घर से बाहर निकल आया। आज मेरा क्रिकेट खेलने को बड़ा दिल चाह रहा था। शाम के वक्त पुराने मोहल्ले में हम सब लड़के मिलकर क्रिकेट खेला करते थे, कितना मज़ा आता था। मगर नहीं, अब इन लड़कों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं घर से बाहर निकला तो मुझे दूर दूर तक कोई नज़र ना आया। सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था, यहाँ तक कि लोग कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, कोई खेलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैंने चलते हुए अपने बराबर वाले घर में झांका। अंदर चंद बच्चे नज़र आए जो लॉन में खेल रहे थे। मैं आगे बढ़ गया। सामने वाले घर से साइकिल पर मेरी हम उम्र दो बच्चे निकले। मैं संभल कर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि जब वो करीब आएंगे तो मुझे इस तरह इनसे बात करनी है, किस तरह इनसे हाथ मिलाना है। जब वो करीब आए तो मैंने हाथ उठाकर इनको सलाम किया, मगर वो तो एक नज़र डालकर मेरे पास से गुजर गए। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि थोड़ी देर को भी नहीं रुके। रुकना तो दूर की बात है, सलाम का जवाब तक न दिया, शायद इसीलिए कि मैं नया हूँ। हाँ यही बात होगी, मैंने अपने आप को तसल्ली दी। फिर मैं काफ़ी देर तक बाहर टहलता रहा, कोई बच्चा नज़र ना आया। आखिर मायूस होकर घर वापस आ गया। अम्मी जब घर पहुंची तो सीधी मेरे कमरे में आई और बोली, सब लड़के तुम्हारा पूछ रहे थे कि आरिफ क्यों नहीं आया, मुझे बहाना बनाना पड़ा कि इसकी तबीयत ख़राब है। और हाँ, लड़के कह रहे थे कि स्कूल में तुम्हारी तबीयत ख़राब थी। मैं गड़बड़ा गया, हाँ वो मेरे सर में दर्द हो रहा था इनके कपड़ों की बदबू की वजह से, अम्मी ने अजीब से लहजे में कहा। नहीं हाँ, वो सुहेल के कपड़े बहुत गंदे हो रहे थे। देखो आरिफ, अम्मी ने नरमी से कहा, गुरूर करना बहुत ही बुरी बात है। आज अगर अल्लाह ताला ने हमें एक अच्छा घर दे दिया है, माल और दौलत से नवाज दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अपना माजी भूल जाएं, गरीब लोगों को हकारत से देखने लगें। हमें हर वक्त याद रखना चाहिए कि हम पहले कहाँ थे। अब अल्लाह ताला ने हम पर मेहरबानी की है तो हमने शुक्र अदा करने के बजाय गुरूर करना शुरू कर दिया है। क्या तुम ये नहीं जानते कि गुरूर अल्लाह को किसी हाल में पसंद नहीं है? अम्मी की बात पर मैं खामोश खड़ा रहा, मगर मैं गुरूर तो नहीं कर रहा था। मेरे और इनके दरमियान कुछ तो फ़र्क होना चाहिए, हम इतने अमीर और वो इतने गरीब। दूसरे दिन मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल इरादा ना था, मगर अम्मी के कहने पर उठ खड़ा हुआ। सुहेल मुझे स्कूल के दरवाजे पर मिल गया। इसके चेहरे पर वही पुरखुलूस मुस्कुराहट थी, ऐसा लगता था कि जैसे कल कोई बात ही नहीं हुई। अरे आरिफ कैसे हो, इसने बेतकल्लुफी से मेरे कंधे पर हाथ मारा। मैंने एक नज़र इसके हाथ को देखा और फिर कहा, ठीक हूँ, मगर ना जाने क्यों मुझे खुद अपने लहजा अजीब सा लगा। सुहेल ने एक झटके से अपना हाथ मेरे कंधे से हटाया और फिर तलखी से कहा, हाँ आरिफ साहब, अब आप अमीर हो गए हैं ना, बड़े हो गए हैं ना, अब आपको हमारे कपड़े गंदे लगने लगे हैं। ठीक है आरिफ साहब, आइंदा हम आपको तंग नहीं करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, हम जैसे दोस्त और हमारे जैसा खुलूस तुम्हें इन आलीशान बंगलों में नहीं मिलेगा। और हाँ ये मत भूलना कि जिस अल्लाह ने आज तुमको इतनी दौलत दी है वो कल उसे वापस भी ले सकता है। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। मैं वाकई कुछ शर्मिंदगी सी महसूस कर रहा था, मगर फिर सर झुकाता हुआ क्लास की तरफ बढ़ गया। रात को सोते हुए मेरे जहन में सुहेल की बातें गूंजने लगीं। हसद का मारा मेरी दौलत और शान देखकर जलने लगा है। दूसरी सुबह मैं उठा तो मेरे सर में शदीद दर्द था। मैंने इस दिन स्कूल से छुट्टी की, अब वो दफ्तर जा चुके थे। दोपहर तक मेरे सर का दर्द ठीक हो गया तो मैं कमरे से बाहर आया। अम्मी खाने पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं कुर्सी पर बैठा ही था कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ पता नहीं कौन था मुझसे कहा फ़ोन अपनी अम्मी को दो। मैंने पूछा आप कौन बोल रहे हैं, फालतू बातें मत करो, फ़ोन अपनी अम्मी को दो। मैंने फ़ोन अम्मी को पकड़ा दिया। फिर पता नहीं इस आदमी ने अम्मी से क्या कहा कि अम्मी के चेहरे की हवाएं उड़ने लगीं। मैंने देखा कि इनका हाथ कांप रहा है, लरजते हाथों से उन्होंने फ़ोन रख दिया। अम्मी क्या हुआ, मैंने बेताबी से पूछा। पता नहीं कौन था, उसने तुम्हारे अबू का अगवा कर लिया है। अगवा, मैं चीख उठा। हाँ, और अब तावान मांग रहा है 50 लाख रुपए। 50 लाख, वक्त भी आज शाम तक का दिया है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। अम्मी सर थामे कुर्सी पर बैठ गई। अम्मी अब क्या होगा, क्या हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं? नहीं नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख होंगे, सब जेवर वगैरह मिलाकर। अगर डाकुओं को रुपए ना मिले तो मैं ये सोच कर ही लरज उठा। अम्मी ने अचानक सर उठाया और बोली, ठहरो मैं फ़ोन करती हूँ, इंशाल्लाह बंदोबस्त हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी ने मुझे दिलासा दिया, मगर मैं जानता था कि अम्मी को खुद भी नहीं यकीन नहीं है कि इतने पैसे हो जाएंगे। फिर वो नंबर पे नंबर मिलाने लगी। काफ़ी देर ये सिलसिला चलता रहा। वक्त ने तो जैसे अब दौड़ना शुरू कर दिया था। मैं अम्मी के चेहरे को देख रहा था। हर नया नंबर मिलाते वक्त उनके चेहरे पर एक उम्मीद होती जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ जाती। आखिर थक हार कर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। अम्मी क्या हुआ, मैं बेकरार होकर पूछा। उन्होंने इनकार में सर हिला दिया। इतने में फ़ोन की घंटी फिर बजने लगी। अम्मी ने तेज़ी से फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ वही था। इसने इसी जगह का पता बताया जहां रकम पहुंचानी थी और साथ धमकी भी दी कि अगर पुलिस को इतला दी तो या धोखा देने की कोशिश की तो अम्मी क्यों ना मोहल्ले वालों से बात करें, यहां तो सब अमीर लोग हैं, हमारी मदद ज़रूर करेंगे। हाँ, अम्मी के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण दौड़ गई। हाँ चलो मालूम करते हैं। हम घर से बाहर निकल आए। थोड़ी ही देर में खबर सारे मोहल्ले में फैल गई। 2-3 घरों से मायूस होने के बाद हम जिस मकान में दाखिल हुए वो बड़ा आलीशान था। अम्मी अंदर दाखिल हो गई और मैं बाहर ही खड़ा रह गया। मुझे कुछ घबराहट सी महसूस हो रही थी। क्या इसके अब्बू अगवा हुए हैं, एक लड़की की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा, दूसरे के पास एक लड़की खड़ी मेरी तरफ इशारा करके अपने भाई से बातें कर रही थी। हाँ ये नए लोग आए हैं, इनके भाई ने जवाब दिया। वो शायद समझ रहे थे कि मैं इनकी बातें नहीं सुन रहा। मैंने इनकी तरफ से पीठ मोड़ ली। पहले ये लोग कहाँ रहते थे। लड़की की आवाज़ दोबारा उभरी। ये गरीब लोग हैं, पहले एक गंदे से मोहल्ले में रहते थे, फिर कहीं से इनके पास दौलत आ गई और ये अमीर बन बैठे। मगर ज़रा सोचो कि इनके पास 50 लाख रुपए भी नहीं हैं, हमारे घर मांगने आए हैं। मैं इससे ज़्यादा ना सुन सका और वहाँ से हट गया। थोड़ी देर बाद अम्मी भी मायूस वापस आ गई। जब हम घर पहुँचे तो पुराने मोहल्ले के सब जानने वाले घर पर मौजूद थे। अम्मी की आँखों में आंसू आ गए। वैसे भी वो काफ़ी देर से जब्त किए हुए थी। मेरे मामू आगे बढ़े और इनको दिलासा दिया, बाजी आप मुझे सारे रुपए दे दें, मैं ले जाता हूँ, हो सकता है इनके दिल में रहम आ जाए और वो 15 लाख में ही मान जाए। ये तजवीज़ सबको पसंद आई। फिर मामू रुपए लेकर रवाना हो गए। मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी, अगवा होने वालों ने दी हुई मोहलत ख़त्म हो चुकी थी। अब सबको बेचैनी से अब्बू के आने का इंतज़ार था। अम्मी एक कोने में जायनमाज पर बैठी अल्लाह से दुआ कर रही थी। मेरी आंखों में भी बे इख्तियार आंसू आ गए। मेरा दिल चाह रहा था कि खूब फूट फूट कर रोऊं। वक्त था कि अब गुजर कर ही नहीं दे रहा था। घर में मुसलसल खामोशी थी। बस एक सवाल सबके चेहरों पर था कि अब क्या होगा। अचानक बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। सबकी नज़रें बे इख्तियार दरवाजे की तरफ दौड़ गईं। मामू दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। इनका मायूस चेहरा देखकर अम्मी घबराई हुई इनकी तरफ बढ़ी के कि क्या क्या हुआ। वो लोग पूरी रकम ना पाकर समझे कि हमने इन्हें धोखा देने की कोशिश की है। उन्होंने रकम भी छीन ली और नहीं नहीं, अम्मी एक ज़ोरदार चीख मारकर बेहोश हो गई। मैंने हड़बड़ाकर आँख खोली। चंद लम्हे तक तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। फिर जब कुछ होश ठिकाने आए तो मैंने सुकून का सांस लिया। मैं दरअसल ख्वाब देख रहा था, मगर इतना भयानक ख्वाब, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैं भटक गया था, मेरी नज़रें गड़ पड़ी। फिर अजान होने लगी। मैं वज़ू करने उठा। अम्मी अब्बू भी उठ चुके थे और हैरत से मुस्कुराते हुए मुझे देख रहे थे। नाश्ते की मेज़ पर पहुंचकर मैंने अब्बू से कहा, अब्बू आज शाम को आप जल्दी आ जाइएगा। क्यों बेटा? हम सब आज अपने पुराने मोहल्ले चलेंगे। मेरी बात सुनकर अम्मी अब्बू मुस्कुरा दिए। जैसा कि आपने इस कहानी को सुना और देख सुना, दौलत और पैसे की वजह से लोग अच्छे लोगों को खो देते हैं, तो दुनिया में अच्छे लोगों को हुई आपकी आप पहचान होती है कि लोग कैसे लोग हैं, क्या है। आपको अच्छे लोगों की पहचान होनी चाहिए।